नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से बहुत आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, और वैसे लगातार आप लोगों के पत्र, आप लोगों के ईमेल हम तक पहुंचते रहते हैं, जिनके माध्यम से हमें खुशखबरी मिलती रहती है कि आप सभी की समस्याएं दूर होती जा रही हैं, आप समाधान युक्त होते जा रहे हैं। वैसे भी हमारा लक्ष्य यही है कि आपका जीवन समाधान युक्त हो जाए। ऐसी शुभकामना के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। भ्राता जी, बहुत अच्छे अच्छे समाचार हमारे पास आ रहे हैं, आते रहेंगे ऐसा लगता है, और लगता है कि ये समाधान का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विश्व समुदाय से सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी।
विश्वास तो ऐसा ही है कि इस धरा पर अब जल्द ही स्पिरिचुअलिज्म की लहर फैलेगी। एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य की समस्याएं उसकी अपनी उपज हैं। मन कमजोर कर लिया, विषय वासनाओं के अधीन मनुष्य हो गया, उसकी मॉरल वैल्यूज खत्म हो गई, मनुष्य दूसरे को सुख देने की बजाय कष्ट देने पर उतारू हो गया, तो समस्याओं ने, रोगों ने जरा जन्म ले लिया है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के द्वारा इन समाधान इन सब का हो रहा है, ये हम भी रोज देखते जा रहे हैं।
बिल्कुल, वैसे कुछ SMS आए हैं भ्राता जी आज के इस समाधान एपिसोड में, मैं उन्हें लेना चाहूंगा। लगातार हमारे पास मेल्स तो आते ही हैं, लेकिन SMS के जरिए भी लोग अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं। इनमें से ये पहला SMS भ्राता जी हमारे पास गंगानगर से आया है, और ये कहते हैं कि हम सब ये जानते हैं कि दुनिया ईश्वर की देन है, पर हम ये नहीं जानते कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई कैसे। क्या आप ये बता सकते हैं कि इस संसार की रचना कैसे हुई?
देखिए, बड़ा एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, और डिफरेंट फिलोसॉफीज ऑफ द वर्ल्ड इस पर चिंतन करती आई हैं। क्रिश्चियन फिलोसॉफी कुछ कहती है, हिंदुओं में तो अनेक फिलोसॉफीज हैं इसमें। और भगवान जब इस धरा पर आए तो उन्होंने कहा कि मैं इसको स्थूल रूप में नहीं बनाता हूं। अभी मनुष्य है, पेड़ पौधे, धरती, आकाश, पानी, ये दुनिया भर का तामझाम है।
जी जी, बाइबल में हम सुनते हैं कि भगवान ने एक दिन शायद पेड़ बनाया, एक दिन इसे बनाया, एक दिन इसे बनाया, और संडे को आराम करने लगे।
आराम करने थक गए थे ना बहुत, क्योंकि इतना बड़ा काम किया। तो एक्चुअली भगवान ने आकर बताया कि ये सृष्टि अनादि है जी, अनादि अविनाशी है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युगों का चक्र इसमें सदा ही चलता रहता है। सत्ययुग से अब हम कलयुग में पहुंच गए, अंत अभी ये कलयुग समाप्त होके फिर सत्ययुग में हम ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह एक चक्र चलता ही रहता है। तो भगवान ने इस प्रश्न को ही कैंसिल कर दिया था कि बनाई बनी बनाई है, और जब इस पर हम बहुत गहराई से चिंतन करते हैं तो अभी कैसे बनी, तो देखने में आता है कि सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनती है। आत्माएं अनेक हैं और ये सब प्रकृति है जो दृश्यमान है, दोनों का मिलन होता है और ये संसार बनता है। अब ये एक बहुत गुह्य चीज है कि जैसी आत्मा इस सृष्टि पर उतरती है, उसके वाइब्रेशंस से प्रकृति उसी अनुसार सब कुछ उसे प्रदान कर देती है और खेल आगे बढ़ता है।
मतलब ये अविनाशी है। फिर एक प्रश्न उठता है भ्राता जी इसमें कि हम फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने रचना ही नहीं की, तो रचयिता कहना फिर तो गलत होता है।
देखिए, रचयिता उसको इस सेंस में कहते हैं कि वो कलयुग को आकर सतयुग में बदलते हैं, सतयुग के क्रिएटर हैं वो। कोई कहे वो कलयुग के भी क्रिएटर हैं तो बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि भगवान जो परफेक्ट है, जो सुखदाता है, जो पवित्र है, उसने ये गंदी दुनिया कैसे बना दी? तो उसने निर्माण किया अब कलयुग को बदलकर सतयुग का, और फिर सतयुग से ये सृष्टि आगे बढ़े बढ़ती आई है। तो हम ये कहेंगे कि परमात्मा सतयुग के यानी स्वर्ग के क्रिएटर हैं।
बिल्कुल, मतलब स्वर्ग बनाते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से उसे नर्क बना देता है। लेकिन हर एक चीज के लिए भ्राता जी, जहां तक मैंने लोगों को देखा है, उनके मन में एक प्रश्न जरूर आता है, जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करें, तो कभी ना कभी तो ये सृष्टि रची गई होगी, कब रची गई, ये वाला प्रश्न जरूर आता है।
जरूर आता है, और वैज्ञानिकों के मन में भी ये प्रश्न आया, और अनेक फिलोसोफर्स के मन में भी ये प्रश्न आया था, और लोगों ने एक ही बात कह दी कि 4 अरब वर्ष पहले लगभग ऐसा कह दिया इस सृष्टि की रचना हुई थी। चलो हुई होगी, उससे हमारा लेना देना क्या, ये चक्र तो इस तरह घूमता है, और अब हम कलयुग के अंत में हैं। अब इसको कौन कैलकुलेट करे कि 4 अरब साल पहले सृष्टि की रचना हुई थी या 4.25 अरब साल पहले हुई थी या थोड़े सा आगे पीछे हुआ था, इसके तो कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई तर्क नहीं है, लेकिन एक लंबे काल से ये सृष्टि चलती आती है और ये चक्र इसी तरह से पुनरावृत होता रहता है।
बिल्कुल। तो बता जी, ये जो एक बात कही गई है ब्रह्मा कुमारीज में कि 5000 ईयर का ये चक्र है, और फिर जब ये बात आती है कि नहीं बहुत लंबे समय से ये चली आ रही है, चार अरब कह लीजिए, 5 अरब कह लीजिए, तो फिर यहाँ पे एक विरोधाभास पैदा नहीं होता?
नहीं, सृष्टि तो अनादि है, चक्र घूमता रहता है 5000 साल का, वो अनेक बार घूम चुका है। जब है ही अनादि तो उसकी गिनती नहीं है, इसलिए ये चक्र भी अनंत काल से चलता आ रहा है और अनगिनत समय ये घूम चुका है।
मतलब 5000 साल का एक साइकिल है और लगातार ये चलता ही रहता है। मतलब एक प्रकार से इसे हम 4 अरब 5 अरब जितना कहना चाहें उतना,
जो जितना कहना चाहे कह ले, पर ये उससे भी ज्यादा है।
जी जी जी। अच्छा प्रत्या जी, हमारे पास दूसरा SMS आया है। ये कहते हैं कि सूरज भाई जी, ओम शांति। मैं बचपन से ही आश्रम जाती हूँ, अर्थात विद्यालय में जाती हैं। बाबा से प्यार भी मेरा बहुत है और लाइफ में मैंने दुख सुख भी बहुत देखे हैं। और मेरा एक प्रश्न है कि बाबा ने जब ये ड्रामा लिखा तो फिर इसका एंड इतना बुरा क्यों लिखा? एज अ राइटर आप सुंदर ड्रामा भी तो लिख सकते थे। तो मेरा सवाल यही है कि यदि ये अच्छा एंडिंग इसका होता तो कितना अच्छा होता
है। इसका उत्तर हम दे चुके कि भगवान ने ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखी नहीं, ये तो हर आत्मा का अपना अपना अपनी योग्यताओं के अनुसार पार्ट है। परमात्मा तो कलयुग को आकर सतयुग में बदलते हैं, आकर आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, दुखी से सुखी करते हैं। ये जो ड्रामा का एंड खराब है, ये मनुष्यों ने लिखा है, ये भगवान ने नहीं लिखा।
बिल्कुल। मतलब ये व्यक्तियों का ये कि ये जो मान्यता है कि भगवान ने ही सब कुछ करके भेजा है, ये वाली बात थोड़ी सी समझने की है कि हमारे कर्मों से ये जो अंतिम समय है वो बुरा हो जाता है। दादा जी, ये विशेष बात, जैसे इन्होंने भी ये प्रश्न किया है, कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न लगातार उठता ही रहता है कि ये जो भाग्य जो लिखा है वो भगवान ने हरेक का लिख करके भेजा है, किसी का अच्छा या किसी का बुरा। और ये बात ज्यादातर लोग मानते ही हैं कि जैसा भाग्य लेके आया है उसी के अनुसार उसे सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, भगवान ने भाग्य लिखा नहीं, भाग्य श्रेष्ठ कैसे लिखो इसकी विधि बताई, इसके लिए गाइडलाइन दी, और मनुष्य ने अपने कर्मों के अनुसार स्वयं अपना भाग्य लिखा। इसलिए अपने अपने भाग्य का जिम्मेदार हर मनुष्य स्वयं है, भगवान नहीं।
बिल्कुल। मतलब उन्होंने हमें गाइड किया है, लिखा नहीं है, क्योंकि फिर ये बात हो जाती है कि यदि उन्होंने लिखा तो एक जैसा क्यों नहीं लिखा।
देखिए, एक टीचर जी अपनी पूरी क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है
जी,
वो तो एक ही चीज पढ़ा रहा है, लेकिन हर बच्चे, अब उसको कहो कि किसी बच्चे के एग्जाम में 95% पास आ गए फिजिक्स में, तो किसी के 40% आए, किसी के 20 ही रह गए, तो कहेंगे ये उसके टीचर ने कैसा पढ़ाया, कैसा भाग्य लिख दिया उसका, तो गलत होगा ना कहना। ये हर एक स्टूडेंट ने जैसा ग्रहण किया, जैसी मेहनत की, जैसा एग्जाम में लिखा, वैसे नंबर प्राप्त हुए। ऐसे ही परमात्मा भी परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, वो पढ़ाता है, वो गाइडेंस देता है, और फिर हर एक मनुष्य अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जैसे कर्म करता है वैसा अपने भाग्य का निर्माण कर लेता है।
बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस पे गहराई से सचमुच सोचने की आवश्यकता है कि नहीं भाई, भगवान ने लिखा नहीं है, हम खुद ही लिख रहे हैं। मतलब ये कह लिया जाए ब्रता जी कि अपने कर्मों के आधार पे हम खुद ही अपना भाग्य, अपना जीवन, अपना भविष्य लिखते हैं। अगला हमारे पास आया ब्रता जी, ये जो SMS है ये उर्वशी जी ने भोपाल से भेजा है। ये कहती है कि रिस्पेक्टेड भाई जी, मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एडवाइजर हूँ और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जितने भी कस्टमर से बात करती हूँ सब पहले तो पॉलिसी करने के लिए तैयार रहते हैं और बाद में मना कर देते हैं। समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बाकी के मेरे जो साथी हैं उनमें जो लेडीज हैं वो जब ये करती हैं तो अच्छे से ये कर लेती हैं और उनकी पॉलिसी वो मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं कैसे ये अभ्यास करूं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं, जिससे कि जिन कस्टमर को मैं बनाऊं वो सब मान जाए और साथ ही इस पॉलिसी को लेके भी जाए।
बात मुझे वही याद आ रही थी कि इसने भी अपना भाग्य कभी ऐसा खराब लिख दिया था और इनको ही उस भाग्य को अपने चेंज करना है। तो मैं एक दो विधि इनको सजेस्ट करूंगा। एक तो सवेरे उठते ही जैसे इनकी आंख खुले थोड़ा जल्दी उठें, चिंताओं के संकल्प नहीं, बहुत पॉजिटिव संकल्प करेंगी। सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है इन्हें, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड अब उनके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाएगा जो आज आने वाले हैं। मैं आज की बात करूं, तो सवेरे उठते ही वो संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान की संतान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे पास श्रेष्ठ बुद्धि है और आज जो भी लोग मेरे पास आएंगे मेरी पॉलिसी से कन्विंस हो जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंटली ये संकल्प 3 बार तो अवश्य कर ले, और फिर जब वहाँ जाए, जब लोग इनके पास आए, तो पुनः ये अभ्यास करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और ये आत्मा है। तो इनसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस उनको जाएंगे और ये वाइब्रेशंस उनको कन्विंस कर देंगे।
बिल्कुल, मतलब ये अभ्यास ये कर
लीजिए,
कितने समय तक ये अभ्यास कर लें भ्राता जी, तो कोई भी कस्टमर खाली जाएगा
नहीं, ये रोज ही करें और जब इनको लगने लगे कि अब सब कुछ अच्छा हो गया। वैसे तो इतनी सुंदर बात है कि रोज करने से ये चार्ज हो जाएंगी, मैं तो कहूंगा इसमें 2-3 मिनट लगते हैं, ये अभ्यास रोज कर लेनी चाहिए ताकि चार्ज भी हो जाए, फ्रेश भी हो जाए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे।
बिल्कुल, कई बार भ्राता जी कुछ व्यावहारिक बातों का भी क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे कि जो कस्टमर है वो हमारी बातों को सही, संभवतः ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हम शायद ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातों को।
बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि इनके समझाने में कुछ कमी जरूर रहती है, या इनके बोल में बहुत अच्छी पावर नहीं है, या इन्होंने पहले ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं, कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी काम अवश्य कर रही है। इसलिए अपनी अच्छी बात अच्छे शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में दूसरों के सामने रखना एक बहुत सुंदर कला है। यद्यपि उस फील्ड में ये सबको सिखाई जाती है, फिर भी सबको एक चीज सिखाने के बाद भी हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार ही ग्रहण करता है। तो ये अभ्यास जो मैंने बताया, इनको जोड़ेंगे तो इनकी कला में विकास होगा और ये सफल हो जाएंगे।
चलिए भ्राता जी, उर्वशी जी को हमारी भी शुभकामना रहेगी कि ढेर सारी पॉलिसीज ये करें और साथ ही अपने जीवन में भी खुशहाली लाएं और जो कस्टमर्स हैं उनके जीवन में भी खुशहाली लाएं। भ्राता जी, अगला हमारे पास विजय कुमार जी का आया है। ये कहते हैं कि मैं 30 साल का हूँ, मुजफ्फरपुर से हूँ, और ये कहते हैं कि भ्राता जी कि बिना दवा लिए मुझे नींद नहीं आती है, ये प्रॉब्लम मुझे पिछले 2 सालों से है, मैं मुरली भी सुनता हूँ, राजयोग का अभ्यास भी कर रहा हूँ, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, कृपया बताएं कि मैं क्या करूँ। 30 साल के ही हैं भ्राता जी।
2-4 चीजें इन्हें कर लेनी चाहिए। जैसा हम हमेशा चर्चा करते आए हैं कि ये समस्या संसार में थोड़ी बढ़ती जा रही है, और जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट रहता है, तो कभी कभी वो सोते समय शांत नहीं हो पाता, लोगों को ये समस्या बढ़ने लगती है। एक तो इन्हें अपने नेचर को बहुत कूल और सॉफ्ट कर लेना चाहिए। तो सारा दिन जो व्यक्ति टेंशन में रहते हैं, वो हर बात को बहुत डीपली प्रिंट कर लेते हैं अपने अंतर मन पर, और वो फिर जागृत हो जाती है जब सोने का समय है। इसलिए बहुत लाइटली, बहुत मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, कर्म करना चाहिए, सीरियसली नहीं, हर बात को टेंशन बनाते हुए नहीं, लाइट लेते हुए। कई मनुष्यों की नेचर होती है, जहाँ वो जाते हैं सारे वातावरण में टेंशन हो जाती है, जहाँ वो जाते हैं एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है, सब टाइट हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, जहाँ वो जाएंगे लोगों के उदास चेहरों पर भी मुस्कान उभर जाएगी। तो इनको अपने जीवन को बहुत लाइट, बहुत मुस्कुराता हुआ, बहुत हल्का, बहुत खुशनुमा, पहले तो ऐसी आदत बनानी पड़ेगी। राजयोग को ये इस ओर फोकस करेंगे, क्योंकि राजयोग से हमें शक्ति मिलती है, लेकिन हम जिधर उसको फोकस कर देंगे वो चीजें डेवलप होने लगेंगी। इनको अपने ब्रेन को रोज 10 मिनट एनर्जी अवश्य देनी है। हम उसकी विधि सिखाते रहते हैं, फिर भी हमारे सभी दर्शकों के लिए दोनों हाथ मलते हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 3 बार याद कर लें, ये वाइब्रेशन हाथों से निकलने लगेंगे। फिर दोनों हाथ लेफ्ट राइट सिर पे रख दें, आंखें बंद कर लें 1 मिनट, फील करें ये गुड वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं, उसे रिलैक्स कर रहे हैं। हो सके तो ये सोने से पहले ही कर लें, अगर इनको 10:30 सोना है तो 10 बजे कर लें, 10:15 कर लें, इससे इनका ब्रेन बहुत रिलैक्स होगा। और तीसरी चीज, सोने से पहले 108 बार इन्हें लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूं। और चौथी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन सब आत्माओं से क्षमा याचना करनी है जिनको पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है। बात करें उनसे, मैंने अज्ञानवश, क्रोधवश, अहंकारवश आप सबको कष्ट दिया, अब मैं श्रेष्ठ मार्ग पे आ गया हूँ, मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैंने गलती की, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, आप मुझे क्षमा दान दें, सुखी हो जाएं, मुझे क्षमा करके आप सुखी हो जाओ, तो उनके दिन के बीच में जो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो चल रहा है ये कट जाएगा और ये रिलैक्स होंगे, नींद आने लगेगी। गोलियों से नींद लेने से तो ब्रेन डल होने लगता है डे बाय डे, और सो के जब मनुष्य उठता है तो वो फ्रेश नहीं होता, उसे थका थका मनुष्य उठता है। इसलिए गोली खा के सोना, इसको तो विदाई दे देंगे और ये अभ्यास करें। और मैं समझता हूँ जैसा आज तक का अनुभव है 21 दिन में ही इनकी गोलियां छूट जाएंगी और ये फ्रेश नींद का आनंद।
तो अभी क्या करें भ्राता जी, दवाइयों को पूरी तरह बंद करके ये अभ्यास शुरू करें या अभ्यास करते करते दवाइयां कम करते जाएं?
धीरे धीरे आधी आधी गोली कम करेंगे, तीन तीन दिन के बाद। अगर ये दो खाते हैं तो तीन दिन के बाद डेढ़, फिर तीन दिन के बाद एक, और बहुत जल्दी छूट जाएगी।
जी जी भ्राता जी, अगला हमारे पास जो SMS आया है ये कहते हैं, ओम शांति भ्राता जी, मैं 7 साल से विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और कई बार मैं बाबा से मिलन भी मना चुका हूँ। बीटेक मैंने किया है, आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो गया है, बस मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। कृपया बताएं कि इंटरव्यू में मैं संपूर्ण रूप से सफल हो जाऊं, उसके लिए मुझे अभी क्या अभ्यास करना चाहिए?
देखिए, सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर काम करने के लिए विजन बहुत सुंदर चीज है। खुली आंखों से विजन बना लें, अभी बना लें, ये सवेरे उठते ही बना लें कि बस इंटरव्यू हो रहा है और जो लोग सामने बैठे हैं बहुत खुश हो रहे हैं मेरे उत्तर सुनकर, और बस मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। अब जिस भी पोस्ट पेड को पहले पहले होगा, ये लेफ्टिनेंट बनेंगे, बस वहां मैं बैठा हूं और मेरी ट्रेनिंग हो रही है। एक सुंदर विजन ये बनाएंगे और आज से ही शुरू कर दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोज सवेरे उठ के 7 बार करें, जब इंटरव्यू देने जाएं तब करें, और जब बिल्कुल वहां अपीयर हो रहे हो एक बार तब भी कर लें। तो बहुत कॉन्फिडेंटली, बिना डर के, इस विश्वास के साथ कि मेरा सिलेक्शन जैसे हो ही गया है, बस मैं तो जस्ट एक नियम निभाने जा रहा हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहा हूँ, इस उमंग उत्साह के साथ ये जाएंगे तो चेहरे पर इनके एक्सप्रेशन भी कॉन्फिडेंस के दिखाई देंगे, और कॉन्फिडेंटली जब ये उत्तर देंगे तो बहुत इफेक्टिव।
ज्यादातर यही होता है भ्राता जी, प्री तो लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब मेंस की बात या इंटरव्यू की बात आती है, स्पेशली इंटरव्यू की जब बात आती है, तो बच्चे बहुत घबरा से जाते हैं कि पता नहीं वो क्या पूछेंगे, वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मुझे लगता है ये सारे अभ्यास सभी बच्चों के लिए काम आएंगे।
केवल बात कॉन्फिडेंस की है, सिंपल सिंपल हम सुनते हैं इंटरव्यू में बहुत छोटी छोटी सी बातें पूछी, वो तो चेहरा देखते हैं
ये कितने कॉन्फिडेंट हैं,
कितना इनमें साहस है, ये आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे या नहीं, ये डर तो नहीं रहे हैं, नर्वस तो नहीं हो जाएंगे। बस, और मिलिट्री है तो उनको ऑफिसर बनना होगा तो बहुत बोल्ड होना चाहिए, बिल्कुल निर्भय, तो ये चीजें वो चेहरों से नोट करेंगे।
जी जी जी, चलिए, और ये भी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि ये जल्दी से इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएं, और जब आप सेलेक्ट हो तो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि मिठाई जरूर भिजवा दीजिएगा हमारे लिए भी। भ्राता जी, हमारे पास अगला SMS आया है।
आप इतनी मिठाई खाएंगे कहीं डायबिटीज?
भ्राता जी, मैं हमेशा खुशी में कहता हूँ, प्यार से कहता हूँ, वैसे तो जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो सचमुच हमारे लिए उससे बड़ी खुशी,
वही सबसे बड़ी।
जी 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 भ्राता जी, अगला हमारे पास जो SMS आया है ये राकेश जी का है, आगरा से है। ये कहते हैं कि सूरज भाई जी, ओम शांति, आप तो मेरे लिए बाबा का वरदान हो, आप वरदान हैं भ्राता जी, इनके लिए, हम सब के लिए भी आप वरदान हैं। जो ज्ञान लेना है वो बाबा आपको निमित्त बना करके मुझे दे देते हैं। मैं मुरली सुनने कम जा पाता हूँ, पर आपकी सुबह 6 बजे की क्लास मैं रोज सुनता हूँ और वैसे ही मैं योग का अभ्यास करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि भोजन बाबा की याद में खाना है, मैं कैसे एंड कोर तक, मतलब अंतिम गिट्टी तक, मैं कैसे बाबा की याद में खाऊं, ये एक प्रश्न इनका है भ्राता जी। और अगला भी प्रश्न है, पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहूंगा।
बहुत अच्छा है, ये अपने उन्नति कर रहे हैं, इससे बधाई के पात्र हैं। ये ज्ञान तो स्वयं से बाबा से आया है, हम तो उसके लिए निमित्त हैं, और हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे मुख से जो ज्ञान दिया जाता है, जो बाबा का ज्ञान है, सुप्रीम का ज्ञान है, उससे आत्माओं की पालना होती है, वो संतुष्ट होते हैं, उनके विचार महान बनते हैं, या उनके संकल्पों की स्पीड स्लो डाउन होती है, या उनके जीवन में सुख आता है, ये सब बातें हमें मिलती रहती हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सारे प्रयास सफल हो रहे हैं। भोजन खाते हुए सचमुच अगर योग युक्त रहा जाए तो ये भोजन आत्मा को बहुत प्योरिफाई करेगा, विचारों को शुद्ध करेगा, देह में जाएगा तो अनेक रोगों को नष्ट करेगा, बढ़ती हुई बीमारियों को ये रोक सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही मनुष्य भोजन खाना शुरू करता है तो चाहे स्वाद वश, चाहे नमक कम है, मिर्ची ज्यादा हो गई, इससे फीलिंग में रह के वो भुला देता है सब कुछ। तो बहुत अच्छे योग अभ्यास की जरूरत होती है उसके अलावा भी। और जब ये भोजन की थाली इनके सामने आ जाए तो पहले उसे दृष्टि देके तीन बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर बाबा को थैंक्स दें, आपने मुझे ये पवित्र भोजन भेजा है, ये ब्रह्मा भोजन, आपको बहुत बहुत थैंक्स। फिर उसको ही वो भोजन समर्पित कर दें, ये तुम्हारे भंडारे का है, तुमको अर्पित, पहले इसे आप स्वीकार कर लो। इतना करने के बाद बाबा का आह्वान कर लें, आ जाओ। और फिर भिन्न भिन्न तरीके हैं योग अभ्यास में भोजन खाने के, चाहे तो ऐसा फील करें कि बाबा पास बैठा है, चाहे ऐसा फील करें कि बाबा की ऊपर से किरणें मुझ पर और भोजन पर पड़ रही हैं, मैं खा रहा हूँ, चाहे तो बाबा को अपने सामने बैठा देखकर मन से ही, हाथ न कर दें उधर, एक पीस उसे खिलाएं, एक अपने को खिलाएं। हाथ कर देंगे लोग मजाक करेंगे क्या करने लगे हैं, जैसे मन से हम उन्हें खिला रहे हैं, तो एक अवेयरनेस बनी रहे कि बाबा हमारे साथ है, उसकी याद। पर सबसे पावरफुल रहेगा मैं फरिश्ता भोजन खा रहा हूँ और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। ये अभ्यास करें, अगर इनको भोजन खाने में 20 मिनट लगती हैं तो 5 मिनट से आगे बढ़ाएं, पहले 5 मिनट योग हो जाए, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और इस तरह लगातार ये बढ़ते बढ़ते पूरा समय योगयुक्त होकर भोजन खा सकेंगे।
जी जी, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा देखा जाता है व्रता जी, जितने लोगों से चर्चा होती है इस संदर्भ में या कुछ लोगों के मेल्स भी आते हैं, तो वो कहते हैं कि जब हम बैठते हैं तब तो हम परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम शुरू होते हैं तो बस शुरू ही हो जाते हैं, परमात्मा एक तरफ रह जाते हैं और बस हम भोजन कॉन्शियस हो जाते हैं और वही खाते रहते हैं।
इसलिए मैंने कहा इस तरह के भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे, थोड़ा अटेंशन देंगे, कुछ रिमाइंडर रख लें अपने पास, तो इस कार्य में सहज सफलता हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कि ये कोई बहुत कठिन काम है।
जी अमृता जी, क्या मौन भी इसमें सहायक है? क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग बोलते बोलते शायद खाते हैं या टीवी देखते हुए खा रहे हैं या कुछ और काम करते करते खा रहे हैं, तो शायद इसलिए आत्मा की याद भूल जाती है।
बिल्कुल, हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो सलाइवा निकलेगा शांत में ज्यादा निकलेगा, और वो सब भोजन में जो मिलेगा तो पाचक तत्व जैसे उसमें मिल गए, वो बहुत हेल्दी फूड हो जाएगा हमारे लिए। और वैसे भी मान लो हम बातचीत कर रहे हैं तो हवा भी अंदर जाती रहेगी, जो गलत है। कभी कभी भोजन भी श्वास नली में जा सकता है, वो भी गलत है। इसलिए भोजन को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मानकर अगर हम साइलेंटली और बिल्कुल एकांत में, अभी घरों में एकांत कितना होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो बिल्कुल शांत और एकांत में यदि भोजन करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी।
कई लोग ये भी कहते हैं व्रता जी कि 32 बार आप चबाइए एक कौर को, तो क्या इसके पीछे कोई साइंस है?
साइंस यही है कि भोजन पूरी तरह से लिक्विड जैसा बन जाए ताकि आंतों पर कोई प्रेशर न पड़े और जो सलाइवा है, जो लार है, वो भोजन में पूरी तरह मिक्सअप हो जाए, तो सचमुच ये औषधि बन जाएगा। हमें गिनने की जरूरत नहीं, 32 बार हुआ है, 35 बार हुआ, मतलब हम उसको पूरा लिक्विड बना दें।
बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जैसे बताते जिन्होंने कही थी कि मैं कभी कभी सेंटर जा पाता हूँ या जाता हूँ, ज्यादातर पीस ऑफ माइंड चैनल ही देखता हूँ, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पीस ऑफ माइंड चैनल ही देखते रहें या सेवा केंद्र में जाने का लाभ है?
नहीं, सेवा केंद्र में जाने से ज्ञान में वृद्धि होगी, वहाँ एक सुंदर परिवार इनको मिलेगा और ये भी उस परिवार के मेंबर बन जाएंगे, बहुत सुंदर स्नेह, एक निर्मल प्यार की फीलिंग वहाँ इनको आएगी, अपनेपन की, और वहाँ जो ज्ञान दिया जाएगा उससे इनको बहुत फायदा होगा, विचार बदलेंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि सेवा के कार्य वहाँ बहुत चलते हैं, ये सेवा में भी सहयोग करेंगे तो इनकी और ज्यादा उन्नति होगी, इसलिए सेवा केंद्र पर जाना हर एक के लिए आवश्यक है। पीस ऑफ माइंड पे नो डाउट बहुत अच्छी बातें सारे दिन आती हैं, परंतु सेवा केंद्र पर जाने से एक स्पेसिफिक एनर्जी की इन्हें फीलिंग होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। और एक प्रश्न इस ब्रह जी जो लास्ट में मैंने छोड़ा था, ये कहते हैं कि भ्राता जी मैं एक बार आपसे फोन में बात करना चाहता हूँ।
हाँ ठीक है, आप करा दीजिए और हम इनकी हर बात सुनेंगे और जितना हमसे हो सकेगा इनको और अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे।
ज्यादातर लोगों की भ्राता जी एक जब भी फोन कॉल आते हैं तो वो सभी आपसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए क्या संभावना है?
मैं अपने आशीर्वाद समाधान कार्यक्रम में सबको प्रेषित कर देता हूँ, क्योंकि सारा दिन इतने कार्य होते हैं कि फोन सारा दिन हम ऑन नहीं रख सकते, इसके लिए हम सॉरी भी मानते हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि हमारी बात करने से सबको बहुत फायदा होता है, इस सत्य को हम जानते हैं, लेकिन कार्य ऐसे होते हैं कि सारा दिन फोन हम ऑन नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको फोन करते हैं और साथियों को करते हैं, किसी का इम्पोर्टेंट होता है तो आप लोग हमसे बात करा ही देते हैं।
जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, आप सचमुच समाधान के माध्यम से, पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से सब तक इतनी सुंदर सुंदर बातें पहुंचा रहे हैं और इतना फायदा हो रहा है। जैसे मैंने शुरुआत की थी, इतने अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं कि लगता है कि सब तक वो अनुभव पहुंचने चाहिए, इसीलिए लगातार बीच बीच में मैं भी वो अनुभव शेयर करता रहता हूं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप सबकी कामना तो होती है सचमुच कि हम भी भ्राता जी से बात करें, लेकिन सचमुच भ्राता जी बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारी ईश्वरीय सेवाएं हैं, देश विदेश का भ्रमण होता रहता है, और यहाँ पे भी जब आप माउंट आबू में रहते हैं तो लगातार बहुत सारे लोगों का आना होता रहता है, उनकी ज्ञान रत्नों से आप पालना करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी ईश्वरीय जो सेवाएं हैं उनमें आप संलग्न है, इसलिए तो खैर संभव है ही नहीं कि लगातार फोन पे बात हो सके। इसीलिए हम आपसे ये कहते जरूर हैं, जब प्रोग्राम का समापन होता है आपके पास एक सुंदर सा एड्रेस आ जाता है, जिसमें आप यदि चाहें तो आप लेटर भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और एक नंबर जो उसमें दिया गया है उसमें आप फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं, उसे लिख लिया जाता है, कार्यक्रम में कई बार हम शामिल कर लेते हैं, और बहुत आवश्यक होता है तो भ्राता जी भी बात अवश्य करते हैं। तो आप सबका इस कार्य में हमें सहयोग अवश्य चाहिए, और मैं लगातार ये बात जरूर कहता हूं कि जब आप समाधान में भ्राता जी जो टिप्स देते हैं उन्हें जब आप यूज करते हैं, जो अच्छे अनुभव आपको प्राप्त होते हैं, हम तक अवश्य प्रेषित कीजिएगा, क्योंकि वो सुन करके औरों में भी बहुत उमंग उत्साह आता है, और सच मानिए सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है कि यहाँ से जो समाधान आप तक पहुंचाया जा रहा है वो आपके जीवन में खुशहाली ला रही है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन समस्याओं से मुक्त होता चले, समाधान युक्त होता चले, और आप खुशहाली पूर्वक अपने जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करें। कल्पना, आपसे मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ओम शांति, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कटनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान।